दया। जिन दिनों में न्यायियों ने न्याय किया, उन दिनों देश में अकाल पड़ा और एलीमेलेक, उसकी पत्नी नाओमी और उसके दोनों पुत्र महलोन और किलियोन कुछ समय के लिए मोआब में रहने को चले गए। अब एलीमेलेक अपने दो पुत्रों समेत मर गया, जिन्होंने मोआबी स्त्रियों ओरपा और रूत से विवाह किया था। लगभग 10 वर्ष वहां रहने के बाद दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। संकलक की टिप्पणी, त्रासदियों में विकल्प होते हैं। कोई व्यक्ति पिछले आशीर्वादों के लिए धन्यवाद दे सकता है या अपनी वर्तमान परेशानियों के लिए ईश्वर को दोषी ठहरा सकता है। टिप्पणी समाप्त करें। जब उसने मोआब में सुना कि यहोवा अपने लोगों को भोजन उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करने आया है, तो नाओमी और उसकी बहुएं घर लौटने के लिए तैयार हो गईं। वह उस सड़क पर निकल पड़ी जो उन्हें यहूदा देश में वापस ले जाएगी। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम सब अपनी अपनी माता के घर लौट जाओ कि दूसरे पति के घर में विश्राम पाओ। उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन नाओमी ने जोर दिया। इस पर वे रो पड़े और ओरपा ने अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे चिपकी रही। संकलक की टिप्पणी, ओरपा का प्यार रूत जितना गहरा नहीं था। उनकी हरकतें उनके प्रेम की डिग्री को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। ईश्वर के प्रति उनके प्रेम के प्रति किसी के कार्य भी उसके प्रति उनके प्रेम की व्यक्तिगत गहराई को दर्शाते हैं। टिप्पणियां समाप्त करें। किंतु रूत ने उत्तर दिया, मुझसे आग्रह मत करो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं या तुमसे दूर हो जाऊं। जहां तुम जाओगे मैं वहां रहूंगा, और जहां तुम रहोगे मैं रहूंगा। तेरी प्रजा मेरी प्रजा ठहरेगी और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर ठहरेगा। जहां तुम मरोगे मैं मरूंगा और वहीं मुझे दफनाया जाएगा। यदि मृत्यु के अलावा कुछ भी तुम्हें और मुझे अलग करता है, तो प्रभु मेरे साथ व्यवहार करें, चाहे वह कितनी ही कठोरता से क्यों न हो। जब नाओमी को एहसास हुआ कि रूथ उसके साथ जाने के लिए दृढ़ है, तो उसने उससे आग्रह करना बंद कर दिया। तो दोनों स्त्रियां बेतलहम पहुंचने तक चलती रहीं। जब वे बेतलहम में पहुंचे तो जौ की कटाई आरंभ हो रही थी। रूत ने नाओमी से कहा, मुझे खेतों में जाकर जो कोई मुझ पर प्रसन्न हो उसके पीछे बचा हुआ अनाज उठा लाऊं। नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, आगे बढ़ो। इसलिए वह बाहर गई और कटाई करने वालों के पीछे खेतों में बीनने लगी, और ऐसा हुआ कि वह एलीमेलेक के वंश के बोअज के खेत में काम कर रही थी। बोअज बेतलहम से आया और फसल काटने वालों को नमस्कार किया, प्रभु तुम्हारे साथ रहें, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे, उन्होंने वापस बुलाया। बोअज ने अपने फसल काटने वालों के प्रधान से पूछा, वह किसकी युवती है? प्रधान ने उत्तर दिया, वह मोआबी है जो नाओमी के साथ मोआब से लौट आई है। उसने कहा, कृपया मुझे कटाई करने वालों के पीछे फूलों के बीच से बीनने और इकट्ठा करने दो। वह खेत में चली गई और आश्रय में थोड़े समय के आराम को छोड़कर सुबह से अब तक लगातार काम किया है। संकलक की टिप्पणी, उनके कानून के अनुसार रूथ को एक इसराइली की विधवा के रूप में बीनने का अधिकार था, लेकिन उसने समझदारी से काम लिया और मालिक के प्रति अपना सम्मान दिखाते हुए अनुमति मांगी। टिप्पणी समाप्त करें। बोअज ने रूत से कहा, मेरी बेटी, मेरी बात सुनो, न जाकर दूसरे खेत में बीनना और न यहां से दूर जाना, तुम मेरी दासियों के साथ यही रहो, उस खेत पर नजर रखें जहां पुरुष कटाई कर रहे हैं, और लड़कियों के पीछे पीछे चलें। मैंने पुरुषों से कहा है कि वे तुम्हें न छुएं, और जब कभी तुम्हें प्यास लगे तो जाकर उन घड़ों में से पानी पी लो जो लोगों ने भर दिए हैं। उसने कहा, तुम्हारी दृष्टि में मुझ पर ऐसी कृपा क्यों हुई कि तुम मुझ परदेशी को नोटिस करते हो? बोअज ने उत्तर दिया, मुझे यह सब बताया गया है कि आपने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए क्या किया है। आप कैसे अपने माता पिता और अपनी मातृभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के साथ रहने आई जिन्हें आप नहीं जानते थे? पहले उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी दृष्टि में अनुग्रह पाती रहूं, तूने मुझे तसल्ली दी है, और अपने दास से प्रेम से बातें की हैं, यद्यपि मैं तेरी दासियों में से एक के बराबर भी नहीं हूं। संकलक की टिप्पणी, प्यार को शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन किसी के प्यार की डिग्री नाओमी के प्रति रूथ के कार्यों जैसे कार्यों से अधिक आसानी से मापी जाती है, जिसे अन्य लोग देख सकते हैं। टिप्पणियां समाप्त करें। रूथ शाम तक खेत में बीनती रही। तब उसने अपना इकट्ठा किया हुआ जौ झाड़ा और उसे नगर में ले गई। नाओमी ने देखा कि कितना बटोर लिया है और पूछा, आज तूने कहां से बीन लिया? आप कहां काम किए थे? धन्य हो वह आदमी जिसने आप पर ध्यान दिया। तब रूथ ने कहा, जिस आदमी के खेत में मैंने आज काम किया उसका नाम बोअज़ था। उसने मुझसे यहां तक कहा, जब तक मेरे मजदूर मेरा सारा अनाज काट न लें, तब तक उनके साथ रहो। नाओमी ने कहा कि प्रभु उसे आशीर्वाद दें और वह उसका करीबी रिश्तेदार है, हमारे रिश्तेदारों मुक्तिदाताओं में से एक। हे मेरी बेटी, तेरे लिए अच्छा होगा कि तू उसकी लड़कियों के साथ जाए, क्योंकि पराए खेत में तुझे हानि हो सकती है। रूथ जौ और गेहूं की फसल खत्म होने तक बीनने के लिए बोअज़ की दासियों के पास रही। एक दिन नाओमी ने कहा, मेरी बेटी, क्या मुझे तुम्हारे लिए एक घर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जहां तुम्हारा भरण पोषण अच्छी तरह से हो सके? क्या बोअज़, जिसकी दासियों के संग तुम रहे, हमारा कुटुंबी नहीं है? आज रात वह खलिहान में जौ भून रहा होगा। अपने आप को धोएं और सुगंधित करें और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनें। तब खलिहान में जाओ, परंतु जब तक वह खा पी न चुका हो, तब तक उसे यह न बताना कि तुम वहां हो। जब वह लेटे तो उस स्थान पर ध्यान दे जहां वह लेटा है, फिर जाकर उसके पैर उघाड़कर लेट जाओ। वह तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। रूथ ने वैसा ही किया जैसा नाओमी ने कहा था। आधी रात में किसी चीज ने उस आदमी को चौंका दिया और उसने मुड़कर देखा कि एक महिला उसके पैरों के पास लेटी हुई है। आप कौन हैं? उसने पूछा। मैं आपकी नौकरानी रूथ हूं, उसने कहा। अपने वस्त्र का एक कोना मेरे ऊपर फैला दे, क्योंकि तू छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उन्होंने उत्तर दिया, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें मेरी बेटी। यह दयालुता उससे भी बड़ी है जो आपने पहले दिखाई थी। आप युवा लोगों के पीछे नहीं भागे, चाहे वे अमीर हों या गरीब। यद्यपि यह सत्य है कि मैं निकट संबंधी हूं, तथापि मुझसे भी निकट एक मुक्तिदाता परिजन है। रात यहीं ठहरो और भोर को यदि वह छुड़ाना चाहे तो अच्छा है, उसे छुड़ाने दो, परंतु यदि वह न चाहे तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ऐसा करूंगा। संकलक की टिप्पणी, एक धर्मी हृदय व्यक्तिगत इच्छाओं की परवाह किए बिना वही करने की इच्छा रखता है जो सही है। टिप्पणियां समाप्त करें। अगली सुबह वह किसी के पहचाने जाने से पहले ही उठ गई। बोअज़ ने कहा, किसी को यह मालूम न हो कि कोई स्त्री खलिहान में आई है। इस बीच बोअज़ नगर के फाटक तक गया और वहीं बैठ गया। जब वह छुड़ाने वाला कुटुंबी आया, जिसका उसने उल्लेख किया था, तो बोअज़ ने कहा, यहां आओ मेरे मित्र और बैठ जाओ। बोअज़ ने नगर के 10 पुरनियों को साथ लेकर कहा, यहां बैठो। तब उसने छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहा, नाओमी जो मोआब से लौट आई है, वह भूमि का वह टुकड़ा जो हमारे भाई एलीमेलेक का था, बेच रही है। मैंने सोचा कि मुझे इस मामले को आपके ध्यान में लाना चाहिए और सुझाव देना चाहिए कि आप इसे यहां बैठे लोगों की उपस्थिति में और मेरे लोगों के बुजुर्गों की उपस्थिति में खरीदे। यदि तुम इसे भुनाओगे तो ऐसा करो, परंतु यदि तुम नहीं कहोगे तो मुझे बताओ, तो मैं जान लूंगा, क्योंकि आपके अलावा किसी को भी ऐसा करने का अधिकार नहीं है और मैं अगली पंक्ति में हूं। परिजन ने कहा, मैं इसे छुड़ा लूंगा। तब बोअज़ ने कहा, जिस दिन तू नाओमी और मोआबी रूथ से भूमि मोल लेगा, उसी दिन तू उस मरे हुए की विधवा को भी ले लेना, जिससे मरे हुए का नाम बना रहे। उसकी संपत्ति। इस पर छुड़ाने वाले रिश्तेदार ने कहा, तब मैं इसे छुड़ा नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी संपत्ति को खतरे में डाल सकता हूँ। आप ही इसका उद्धार करें। मैं यह नहीं कर सकता, अत छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोझ से कहा, इसे आप ही खरीद लो। तब बोझ ने पुर्नियों और सब लोगों को यह समाचार दिया कि आज तुम लोग गवाह हो कि मैंने एलीमेलेक, किलियोन और महलोन की सारी संपत्ति नाओमी से मोल ले ली है। मैंने महलोन की विधवा मोआबिन रूत को भी अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर लिया है, ताकि मृतक का नाम उसकी संपत्ति के साथ बनाए रखा जा सके, ताकि उसका नाम उसके परिवार के बीच से या शहर के अभिलेखों से गायब न हो जाए। आज आप गवाह हैं। तो बोअज ने रूत को ले लिया और वह उसकी पत्नी बन गई। तब वह उसके पास गया और यहोवा ने उसे गर्भवती होने में समर्थ किया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा की स्तुति करो जिसने आज के दिन तुझे छुड़ाने वाले कुटुंबी से रहित नहीं छोड़ा। वह पूरे इसराइल में प्रसिद्ध हो जाए। वह आपके जीवन को नवीनीकृत करेगा और बुढ़ापे में आपका भरण पोषण करेगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है और तेरे लिए सात बेटों से भी बढ़कर है, उसी ने उसे जन्म दिया है। वहां रहने वाली महिलाओं ने कहा, नाओमी का एक बेटा है, उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वह यिशै का पिता, दाऊद का पिता था। संकलक की टिप्पणी, नाजरेत के यीशु की वंशावली में एक मोआबी शामिल है, रूथ और उसका पति ओबेद डेविड के दादा दादी थे। टिप्पणी समाप्त करें।